ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. హమ్ సబ్నే శివ జయంతి కా మహోత్సవ్ తో ఖూబ్ ధూమ్ధామ్ సే మనాయా. అబ్ ఇస్కే బాద్ కౌన్ సా త్యోహార్ ఆ రహా హై, ఇస్కే బాద్ కౌన్ సా త్యోహార్ ఆ రహా హై, హోలీ. తో ఆజ్ కీ బాబా కీ మురళీ హై హోలీ పర. బహుత్ గుయ్యా బాతే బాబా నే హోలీ పర సమ్ఝాయీ హై. హోలీ పర జలాతే హై ఫిర్ మనాతే హై. तो जलाना क्या है, मनाना क्या है, सब डिटेल में बाबा ने बताया है. होली का क्या सही अर्थ है वो भी बाबा ने बताया है. तो हम ब्राह्मण बच्चे तो उस सच्चे अर्थ से ही होली को समझते हैं. दुनिया में तो होली का दहन होता है, तो घर की पुरानी पुरानी कोई लकड़ियां होती है, कुछ भी पुराना लकड़ियों का, उसको जलाते हैं और समझते हैं ये होली का जलाई. पर बाबा कहते हैं ये पुराने संस्कारों को जलाना है और फिर रंग लगाते हैं. तो सच्चा रंग कौन सा है? बाबा के संग का रंग, यही सच्चा रंग है. वो रंग तो लगाते हैं फिर धुलाई हो जाता है, मिट गया. लेकिन ये संग, तो संग का रंग तो परमानेंट रंग है. अब इस परमानेंट रंग को सदाई अपने ऊपर लगाए रखने के लिए क्या करना होगा वो भी बाबा ने बताया है. तो आज की मुरली भी विशेष है. हम ध्यान से सुनेंगे और फिर इसको अमल में लाएंगे. तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य. आज 1 मार्च 2026 है. 2026 के 2 महीने पूरे हो गए. अब मार्च का महीना आज से शुरू हो रहा है. तो अव्यक्ति इशारे भी इस मास के शुरू हो गए. तो आज 1 मार्च 2026 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 9 मार्च 2009 की. तो 2009 की होली की मुरली अब 2026 में सुन रहे हैं. हेडिंग है परमात्म संग के रंग की. एक है परमात्म संग का रंग और दूसरा है कंबाइंड स्वरूप. संग का रंग लग गया तो कंबाइंड हो गए ना, एक जैसे हो गए. तो परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ. हम लोग तो वो रंग बिरंगे पता नहीं क्या क्या कैसे मुंह बना देते हैं, स्वांग बना देते हैं, कपड़े गीले कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं दुनिया में. इसलिए होली के दिन बाबा मना करते, कहते बाबा कहते बाहर नहीं निकलो. निकलते ही नहीं है बाहर, क्योंकि बाहर तो बहुत रंगते हैं. तो इसीलिए बाबा के बच्चे तो शुद्ध है तो वो इन बातों में नहीं जाते. इसीलिए कभी भी वो जो स्थूल रंग है वो नहीं लगाने हैं और न ही कोई ऐसी कोई होली उस रूप से खेलनी है. हमारी तो ज्ञान के रंगों की होली है ना, तो वो ही खेलनी होती है. तो परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ. आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। बाबा अवश्य होली मनाते थे। कैसे मनाते थे? वो पिचकारी होती है, उस पिचकारी में जैसे केसर का रंग भरते थे तो केसर भी थोड़ा रंगीन हो जाता है, तो फिर पानी रंगीन हो जाता है और वो बाबा भी छिड़कते थे, बच्चों पर बाबा पर भी छिड़कते थे। इस प्रकार बाबा से होली खेलते थे। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। होली इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र है, तो सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हो। सोचो, क्या सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? क्योंकि बाबा तो होली बच्चों को देख रहे हैं, तो कौन सा रंग लगा जो होली बन गए, पवित्र बन गए? रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? कौन सा रंग लगा हमारे ऊपर? परमात्म संग का रंग। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े से बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, पवित्र बन गए। सबसे बड़े से बड़ा रंग है, तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए। क्योंकि परमात्म संग ये अविनाशी संग का रंग है। बाबा अविनाशी है, तो उस अविनाशी संग में रहने से वो अविनाशी रंग लग जाता है, परमात्म रंग। परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। कैसे बन गए पवित्र? परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, साथी बना लिया ना, शिव बाबा को कंपनी बना लिया। इसीलिए कंपनी भी है और कंपेनियन भी है, इसीलिए कंबाइंड हो गए। तो आपने कंपेनियन बना लिया, साथी बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए, इसे जुड़ गए, एक हो गए, दोनों मिल गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? कैसे हैं हम कंबाइंड? हम अकेले नहीं है, बाबा हमारे साथ है। जब हम ये सोचते हैं तो सदा हम बाबा को अपना साथी अनुभव करते हैं, तो उनके संग का रंग लग जाता है। सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं हो। माया अकेला करने की कोशिश करती है, माया छोड़ती नहीं है। हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं और माया हमें अकेला करने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश नहीं कर पाएगी। कब नहीं कर पाएगी? लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वे कभी भी अलग हो नहीं सकते। ऐसे जुड़ गए हैं आपस में जो कभी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर क्या करती है? माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। तो जो शुद्ध संस्कार पवित्रता के हैं वो जैसे अंदर दब जाते हैं, तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार कौन से हैं, कौन से पुराने संस्कार, अलबेलापन और आलस्य। वैसे तो बहुत है पुराने संस्कार, लेकिन बाबा ने यहाँ दो शब्द कहे हैं, अलबेलापन और आलस्य। तो माया क्या करती है, अलबेला बना देती है। व्यर्थ संकल्पों को बाबा कहते समाप्त करो तो माया व्यर्थ संकल्प ला देती है, आलस्य समाप्त करो तो माया आलस्य ला देती है। बाबा जिसके लिए कहते समाप्त करो, माया उसी को ही उभार लेती है, आगे ले आती है। तो अलबेलापन और आलस्य ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो आलस्य और अलबेलापन का बहुत विस्तार है। इससे ये कोई दो शब्द केवल नहीं है, इसकी बहुत गहराई है आलस्य। तो बाबा ने ये कहा है, तो हरेक अपने ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हरेक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया अकेला करने की कोशिश करती है ना, तो बाबा कहते हैं सदा ये चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो, कैसे आती है माया भिन्न भिन्न रूप से वो तो जान गए हो, वो चतुराई से अपना रंग लगा देती है। माया चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। अगर बाबा से अलग हो गए इसका मतलब माया के रंग में रंग गए। ये अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो आलस्य और अलबेलापन को बच्चे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो भिन्न भिन्न रूप से आता है, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। ये अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये क्या है, आलस्य और अलबेलापन रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं, है रावण का खजाना, लेकिन बच्चे रावण के खजाने को लेकर फिर बड़े नशे से कहते हैं। क्या कहते हैं, आलस्य और अलबेलापन आ जाता है तो क्या कहते हैं बच्चे, नशे से कहते हैं मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन क्या करें मेरे संस्कार है। ये है जैसे माया का जो अलबेला बनाती है उसको अपना लेना, लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या, बाबा समझाते हैं, क्या ये परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है। अलबेलापन और आलस्य क्या ये परमात्म खजाना है या माया का खजाना है। उसको मेरा संस्कार कहना, अगर उसको मेरा संस्कार कहते हैं तो सोचो ये राइट है कहना, है माया का संस्कार अलबेलापन आलस्य या जो भी विकार उससे उत्पन्न होते हैं, उसको मेरा समझना क्या ये राइट है। मेरा बना देना ये माया की चतुराई है, माया की चतुराई है। माया आप समझ बुद्धि में ये डाल देती है ये तो मेरा संस्कार है। तो बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है, हाँ भाई बताओ कौन सा खजाना प्यारा है, माया का, रावण का या बाप का। कॉमन रीति से तो बच्चे अपने को छुड़ा लेते हैं, हाँ अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, मैं चाहती नहीं हूँ, हाँ पर आ जाता है ये संस्कार। तो बाबा कहते, वो कहते मैं चाहती नहीं हूँ, तो सोचो क्या ये मेरा है। बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से क्या होगा, है रावण का खजाना, अलबेलापन आलस्य जिसमें सारे विकार भी आ जाते हैं, तो ये रावण के खजाने को अपना बनाने से क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं। शुभ संस्कार, शुद्ध संस्कार, समर्थ संस्कार, ये सब सकारात्मक संस्कार, ये सब समाप्त हो जाते हैं। परमात्म संग का रंग ढीला हो जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, क्या करते हैं होली में, पहले जलाते हैं है ना, फिर मनाते हैं। तो क्या करना है, पहले बुराई को जलाते हैं। वो जलाना क्या है, बुराई को जलाना है ना, वो जो होलिका में लकड़ी वकड़ी जो डालते हैं, सब पुरानी सड़ी हुई, वो सब सड़ा हुआ जो भी चीजें है ना, वो सब वो होलिका दहन में डाल देते हैं। तो पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में एक तो संग का रंग और दूसरा कौन सा रंग लगाया बाबा ने, दूसरा ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, वो भी तो लगाता रहता है ना, हाँ वो भी तो लगाते रहते हैं बाबा। तो संग के रंग में क्या क्या रंग लगाते हैं, ज्ञान का रंग, शांति ये शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वो लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा हुआ है ना सभी के ऊपर रूहानी रंग, बाबा के संग का रंग, ज्ञान का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, ये चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ, सबके पर रंग चढ़ा हुआ है। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना, अब रंग तो चढ़ गया रूहानी रंग पर, ये उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग नहीं लग सकता। रूहानी रंग, ईश्वरीय रंग चढ़ गया तो और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में कितने होली बन गए, केवल एक इस जन्म के लिए होली नहीं बन गए, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन ही नहीं सकता है, और कोई बन ही नहीं सकता होली जितना आप इस समय बाबा के संग के रंग में होली हो गए हो। आपकी पवित्रता प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं, हाँ जो होली तो कई साधु सन्यासी संत होली बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो उन्होंने का शरीर तो पवित्र बनता नहीं है, क्योंकि ये तो सब द्वापर से ही है, द्वापर में तो शरीर तो पवित्र नहीं मिलता है, तो वो उनका शरीर तो पवित्र नहीं बनता। आत्मा पवित्र बनती है, लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को क्या, पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है, सबका मूल आधार पवित्रता है, फिर ये सारे गुण हैं, तो जननी है, माँ है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं, मगर माँ जहाँ है उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी तो साथ साथ होते हैं। जहाँ जननी होती है वहाँ बच्चे होते हैं, क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाते हैं जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग का लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो ना, देवताओं के चित्र। हम लास्ट जन्म में है तो भी वो पहले हम क्या थे वो चित्र देखते हैं ना, तो अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उनों की पूजा होती है। हमारे ही चित्रों की पूजा कितनी विधि पूर्वक होती है, ये पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं धर्म आत्माएं पवित्र बनी हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है, मंदिर तो देवताओं का ही बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक, एक तो ऐसी पूजा किसी की नहीं होती है, दूसरा लास्ट जन्म तक, अभी हम अंतिम जन्म में है, वही देवताएं अंतिम जन्म में आ गए हैं, और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। भक्त जाते हैं ना चित्रों के सामने और दुआएं मांगते हैं, तो दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। मंदिर में जाते हैं थोड़ी तो शांति मिलती है ना, उस समय थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, हाँ हम भी करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं, परंतु वो केसर का पानी ही होता है, वो तो फिर थोड़ी देर के बाद धूप लगने से वो रंग उड़ जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत तो हम भी करते हैं मनोरंजन के लिए। थोड़े समय का सुख, हाँ भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप ही मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, बाबा होली का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। हाँ, जो आप ही जानते हो आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है, सबसे बड़ा अर्थ है हिंदी में, होली का अर्थ क्या है, होली, होली मना हो गई, जो बात गई वो हो गई, तो इसलिए होली। तो होली का अर्थ है होली माना बीत चुका, सो बीत चुका, पास्ट इज पास्ट, तो होली माना पास्ट इज पास्ट। तो वो होली अर्थात बीत चुका, सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी है ना, कर दी है होली सब पुराने को। बीती सो बीती करना अर्थात होली, तो ऐसे किया है या अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, तब बाबा ने और गहरी बात बताई है होली करना करने के लिए, जब हमारा जन्म ही नया है, द्विज बन गए ना, दूसरा जन्म है हमारा, वो तो शूद्र का जन्म था, अभी ब्राह्मण बने हैं, तो हमारा ये नया जन्म है। तो जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना, बने हो, मरजीवा बने हो, हाथ उठाओ भाई, मरजीवा नया जन्म लिया है ना, मर जीवा पुराने जन्म से मर गए, अब ये नया जन्म है, तो मर जीवा बने हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म याद कैसे आता है? अब किसको याद है पुराना जन्म? वैसे भी पिछला जन्म किसी को भी याद नहीं है, किसी को याद, अगर याद होता भी ना तो और ही परेशान हो जाते, इसीलिए ड्रामा अनुसार किसको भी पहला पूर्व जन्म याद नहीं है, अच्छी बात है। पूर्व जन्म याद आना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि अभी ये नया जन्म है, सब कुछ नया है, तो ब्राह्मण बने तो भी तो नया जन्म है ना, मर जीवा उस जन्म से मर गए, अब ये नया जन्म। तो फिर बाबा कहते हैं आप तो बाबा कहते हैं नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है। अगर कहते ये मेरे पुराने संस्कार है, माना पुराने जन्म की याद है, पुराना तो पुराना हो गया, अगर बीती बातें या संकल्प या संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इमर्ज हुआ पिछले जन्म का संस्कार स्वभाव। तो बाबा कहते हैं तो क्या कहेंगे, होली मनाई। अब होली का तो मतलब है जो बात हो गई सो हो गई, वो तो वैसे भी कहते हैं रात गई बात गई, रात गई बात गई, नया दिन आ गया, पिछले दिन की बातें गई, पूरा हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं होली मनाई है, पिछले जन्म की बातें तो होली हो गई ना। होली किया नहीं परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं क्या। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। कैसे पता चलेगा परमात्म संग का रंग लगा है, परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना। क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है। है भाई किसी को पुराना जन्म, पहले जन्म की यादें कुछ भी नहीं है, तो जन्म तो वो तो याद नहीं। तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार, क्या वो आपके हैं। ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं, कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य, आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना आलस्य और अलबेलापन, इनके भिन्न भिन्न रूप क्या है, कभी इस पर क्लास करना। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आता है आलस्य। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना तो कुछ भी हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली हो गई, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है, तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो ना, प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो ना, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो ना। क्यों, होलीस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो, आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, पुराने संस्कार को आने नहीं देना, ये होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे वो पुराने संस्कार वापस आ जाएंगे, हैं? मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे ये रॉयल शब्द कि मैं नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करें, बेबसी मेरे संस्कार है। ये शब्द आज क्या करो, मेरे संस्कार है, क्या करें, ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो या कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली यानी होली बीती सो बीती, जन्म नया है और वो पुराना जन्म खत्म, ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे हो ना, तो ये संकल्प तो नहीं दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। केवल संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। फिर बाबा कहते हाथ उठाओ, हाँ भाई हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाया तो दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी है, सब ने हाथ उठाया, कोई कोई ने नहीं भी हाथ उठाया होगा, लेकिन बाबा कहते सब ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए जिन्होंने हिम्मत नहीं रखी, हाथ नहीं उठाया, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, जिन्होंने हाथ उठाया आप तो साथी हो ना, जिन्होंने नहीं उठाया चलो वो नहीं है, पर आपने हाथ उठाया तो आप तो साथी हो ना। हाँ पक्के साथी हो तो दो दो हाथ उठाओ, अगर पक्के साथी हो भाई। देखो कितने हाथ उठाते हैं, क्यों भाई आगे वाले नहीं हाथ उठा रहे हो? हाँ ठंडी लग रही है तो बाबा कहते हाथ उठाओ। बाबा हमेशा कहते थे आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, आगे वाले समझते ना कि हम तो है ही ना, तो बाबा कहते हैं लेकिन आप सब तो पक्के साथी, तो दो दो हाथ उठाओ, ये फोटो निकालो सबका। बाबा वीडियो वालों को तो जरूर कहते थे फोटो निकालो। अच्छा डबल विदेशी भी हाथ उठा रहे हैं, बहुत आ गए थे होली पर भी, बहुत डबल विदेशी हाथ उठाते हैं, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। हाँ होली मनाने की, अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना। कौन सा शब्द नहीं निकालना? मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो? एक भाई था, वो बहुत, उसका आवाज ही ऐसा था जोर से बोलना, धीरे तो बोल ही नहीं सकता था भाई। कई बार होता ना भाई धीरे भी बोलना होता है, उस एक व्यक्ति को ही सुनाना है, कोई 10-20 को थोड़ी सुनाना है, एक ही व्यक्ति को, लेकिन धीरे बोल ही नहीं पाता था। तो जब भी अब जाते देखते इतना जोर से बोल रहा है और है एक ही व्यक्ति सुनने वाला, तो मैंने ऐसे इशारे से उसको कहा भैया धीरे से बोलो। हाँ धीरे से बोलो। कहता है क्या करे बहन जी, मेरे माँ बाप ने ही ऐसा गला दिया है। तो दोष किसको दे दिया? मेरे माँ बाप को। मेरा पिता भी ऐसा ही बोलता था, इसीलिए ये दोष माँ बाप को दिया। बताओ माँ बाप को दोष देना होता है क्या? आपको जन्म दिया यही बड़ा काम किया। हाँ तो दोष दो कि ये सब मेरे माँ बाप के संस्कार। तो बाबा कहते हैं तो अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना कि मेरा संस्कार। ये मेरा संस्कार जो रावण का संस्कार है उसको मेरा कहते हो, कमाल है। बाबा कहते कमाल है, है वो रावण का संस्कार और उसको मेरा संस्कार कहते हो। हाँ जब देखो जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती थी या बाबा मिलते भी थे तो कितना सॉफ्ट वॉइस, कितना सॉफ्ट वॉइस। तो मुझे याद है कभी सुनाया भी है कि किसी डबल विदेशी ने बाबा से पूछा, तब तो मिलते थे पर्सनल, तो वो जरा रमणीक भाई था डबल विदेशी, बाबा से उसने पूछा बाबा आप इतनी धीमी आवाज में कैसे बोलते हो? हाँ इतनी धीमी आवाज, तो क्योंकि कई बार दादियां भी तो हमारी हेडफोन लेती थी ना, ईयरफोन लेती थी सुनने के लिए, क्योंकि नजदीक आवाज नजदीक वाले भी नहीं सुन पाते थे कई बार बाबा की आवाज। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ना धीरे से कैसे बोलते हो? बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन की आवाज है, ये सूक्ष्म वतन की आवाज, केवल विस्पर, केवल होंठ चलना, बस तो चलो थोड़ी आवाज निकली, केवल होंठ चलना। तो बाबा सूक्ष्म वतन की आवाज, सूक्ष्म वतन से आते हैं और हम या स्थूल वतन में टॉकी तो इतना जोर से बोलते हैं ना, लेकिन कई बार बोलना पड़ता है, जिसको थोड़ा कान से कम सुनता है तो उनके आगे तो फिर बोलना पड़ता। अभी अगर कान भी ठीक है फिर तो बहुत जोर से बोलने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कमाल है, मेरा संस्कार कहते हो, रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है, अब दुश्मन का खजाना अपना बनाना ये तो आश्चर्य की बात है। है वो दुश्मन की चीज और दुश्मन की चीज को अपना बना लिया, ये तो कमाल की बात है ना? कमाल है ना, आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना, क्या कहते हैं, गलती से कह देते हो कि मेरा संस्कार, कह देते हैं फिर अंदर में दिल तो खाती भी है ना, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, फिर माफी भी लेते हैं, फिर बाबा से माफी भी लेते हैं, बाबा कल से नहीं करूंगा या करूंगी, फिर भी कर देते हैं, माफी भी मांगते हैं, कहते नहीं करेंगे फिर भी कर लेते हैं। अभी बाप दादा क्या करे बताओ, बाबा को बाबा क्या करे, देखता रहे कि बच्चे कहते भी है, माफी भी मांगते फिर भी करते रहते, क्या देखता रहे। अभी इस शब्द की होली जला लो। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, क्या करते हैं, होली पर कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं ना, मोटी मोटी रोटी बनाते हैं फिर वो धागा बांधते हैं, खास सिंधियों में बहुत होता था, मुझे भी याद है हमारे घर में भी करते थे। और वो गोबर लेते थे, गोबर लकड़ी में गोबर, और वो गोबर को जलाते थे और उस पर मोटी मोटी लकड़ी वो रोटी जला पकाते थे। तो कैसा आश्चर्य होता था कि रोटी तो जल जाती थी पर धागा नहीं जलता था। तो यही बाबा मिसाल देते हैं, कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता है। ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है उसकी बना दी है। तो बाप दादा देखते हैं कि यो त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। है तो वो भी बाप के बच्चे ही जिन्होंने शास्त्र बनाए, जिन्होंने ये कहानियां बनाई ना, होलिका की कहानियां, प्रहलाद को गोद में बिठाया और जलाया तो प्रहलाद तो बच गया और यार होलिका जल गई, तो आत्मा तो बच जाती है शरीर जल जाते हैं, कमाल कम नहीं है। तो ये बाप के बच्चे लेकिन आप हो सिखी लदे, तो भल उसमें आटे में नमक है वो कहानियों में लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया है, भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी है, संगम युग की बातें स्मृति में रखी है, भक्ति में भी अति विकारी बनने से बचाया है। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है, फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। हाँ ब्रह्मचर्य में रहते हैं, नवरात्रि में तो खास बहुत कुछ करते हैं। तो अपने तो आपने आज कौन सी होली मनाई, कौन सी होली मनाई, होली सब कहो होली। हाँ ऐसे करो, फिर बाबा ने इशारा दिया होली ऐसे होली। हाँ होली हाँ, मन गई वो बात गई होली, तो हाथ का इशारा बाबा ने दिया होली, तो पक्का है ना मनाया, मनाया, अच्छा फिर कल माया आएगी फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, बच्चों ने होली कर दी है, हटा दिया, निकाल दिया, फिर माया सुन भी रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, आप उनको बुलाना नहीं, मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना, बाबा के संग के रंग में रहना, बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए हो। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस, होली हंस, हंस में निर्णय करने की बहुत शक्ति होती है। कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो। कौन सी सीट फिक्स कर लो? पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। अब कौन सी सीट पर सेट हो और फिर निर्णय करो, वो सीट जानते हो? वो सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। कोई भी निर्णय लेते हो किसी भी बात में, तो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो करके निर्णय लो। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान, ये करने से आगे क्या इसका नतीजा होगा, ये पहले से ही सोचो। तो फायदा है या नुकसान तीनों कालों में? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? बाबा पूछते हैं चतुराई क्या करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, अब ये चतुराई करते हैं, वो काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया, काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया, क्योंकि उस समय काम चलाना था। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा। अब भले चला लिया, कर्म कर लिया, पर कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, बाप को भी बहुत रिझाते हैं, मनाने की कोशिश करते, रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। अब क्या सुनाते बाबा को? बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना, बाप को भी याद कराते हो कि आप कौन हो, आप तो क्षमा के सागर हो, आप रहम दिल हो ना, आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, आपने ही तो कहा है, बस जो भी मन में ना बाबा को सुना के खत्म कर दो। लेकिन सुनाओ जरूर, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो, अंदर में महसूस करो, और फिर कहो आगे नहीं करूंगा, खाली हाँ बाबा ये तो भूल हो गई, बाबा माफ कर दो, तो खाली माफ करो नहीं, बाबा फिर दोबारा नहीं करूंगा, ये महसूसता की शक्ति अंदर में हो, तब फिर बाबा को कहो कि हाँ बाबा माफ करो। लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, कौन सा? सुना तो देती हो, क्योंकि बाबा कहते बाबा को सुनाओ, जो भी किचड़ा अंदर जो कुछ भी बोझ है वो सुनाओ बाबा को, तो सुना तो देते हो। लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिझाते बहुत हो, ये ना मनाने की कोशिश करते ना, रिझाना। आपने कहा है ना बाबा, बाप को भी याद दिलाते हो, बाबा आपने ही तो कहा है ना, आपने ही तो ये कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हो। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गेगे नहीं करना। बाबा याद दिलाते हैं, करेंगे देखेंगे करेंगे, गेगे करना ही है, गेगे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गेगे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे दिखाएंगे बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या, स्पीड क्या? गेगे वाले बाप के साथ चले गए, अब गेगे ही करते रहेंगे तो वो तो बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। बाप तो एवर रेडी है और गेगे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं जिन्होंने गेगे नहीं किया, दृढ़ संकल्प किया, परिवर्तन कर लिया, वो तो बाबा के साथ जा रहे हैं और हम गे करते रहेंगे, देखेंगे तो अब तो पीछे रह जाएंगे। तो बाप तो एवर रेडी और गेगे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे, बाप के साथ जा रहे हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया, परिवर्तित हो गए, वो तो बाबा के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले, क्योंकि गेगे करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, वो तो साथ नहीं जाएंगे। तो बाबा तो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ न चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है ना। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? क्या वायदा किया है हम सब ने कि बाबा हम आपके साथ चलेंगे या आपके साथ चलेंगे या आ जाएंगे आपके पीछे पीछे, ऐसा वायदा किया है क्या? इसमें भी गेगे लगाएंगे, आपके पीछे आएंगे, ये गेगे लगाएंगे क्या? पहुंच जाएंगे, देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। अब ये भाषा अब समाप्त करो, ये भाषा गेगे की समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वो भी बाप दादा को देखते रहते हैं। फिर तो ऑडियो विजुअल हो गया, इंटरनेट सबके पास आ गया, तो इंटरनेट के माध्यम से विदेशों में भी सब देख भी रहे थे, सुन तो रहे थे तो देख भी रहे थे। आप टोली खाते हो ना तो वो भी टोली बांटते हैं। हाँ भाई, लंदन में टोली बांटते हो बाबा की मुरली के बाद? बांटते हो लंदन में सची? हाँ, जैसे यहाँ बांटते हैं, बूंदी का पैकेट बांटते हैं, सबको देते हैं। आप लोग कौन सी टोली देते हो? हाँ, लंदन वाले बैठे हैं, कौन सी टोली देते हो? अलग अलग। हाँ अच्छा, तो बाबा कहते हैं आप भी, आप टोली खाते हो ना तो वो भी टोली बांटते हैं, वो भी समझते हैं हम तो मधुबन में जैसे बैठ के मुरली सुन रहे हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल, दादी जी हमेशा यही कहती थी, कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, दादी जी कहते थे। और मम्मा के ये बोल, मम्मा के बोल क्या थे कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के ये बोल, दीदी के कौन से बोल थे? अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए। दादी जी हमेशा कहती थी, हमेशा कि कैसे होना ही है, कर्मातीत बनना ही है, संपूर्ण बनना ही है। तो देखो, दीदी के, दादी के, मम्मा के बोल, बाबा ने कहा ये कानों में गूंजना चाहिए बार बार, अब घर चलना है तो धुन लगा दो, धुन लगा दो, ये कर्मातीत होना है, अब घर चलना है, ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली, बच्चों को होली की मुबारक हो। और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले, मधुबन के गेवर के पहले, गेवर खाते ना ये, मोटी जलेबी, जैसे जलेबा हाँ, मोटा मोटा होता है, वो गेवर कहते हैं उसको, खास होली पर खाते हैं। मुझे याद है बाबा एक होली पर आए थे, तो मुरली तो एक दिन पहले चलती है, तो सारी रात बाबा की मुरली चलती है और मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं। तो सवेरा हो गया, 5 बज गया, सवेरे 5 बजे तक मिलते ही रहे मिलते ही रहे। तो सवेरे सवेरे एकदम वो तब हमारे राम लोचन भाई थे यहाँ किचन में, तो राम लोचन भाई उसी समय गरम गरम वो गेवर बनाया था उसने, उसी दिन भोग था, गुरुवार का दिन भी था, भोग था, तो गेवर बनाया था बाबा को भोग लगाने लिए। तो फिर वो गरम गरम गेवर लेकर के आया यहाँ, याद है ना, ओम शांति भवन में, और बाबा को खिलाए, तो जैसे बाबा को भोग उसी समय खिला दिया, तो वो गेवर, तो बाबा ने गेवर को याद किया है। सबने खाया है ना, हाँ, वो जैसे बूंदी तो छुपत, ये क्या होती, जलेबी तो छोटी होती है परंतु ये थोड़ा बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, और साथ में, तो साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ, खोलो भाई मुंह, गेवर खाओ। खाया, फिर बाबा पूछते खाया, तो सभी को बहुत बहुत पदम गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव, जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा या इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़ा शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है कि ये मुझे करेक्शन क्यों कर रहा है, ये मुझे ऐसे क्यों समझा रहा है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता है, कहेगा क्यों मुझे कहते है, कौन है मुझे बोलने वाला। परंतु अगर कोई आपको करेक्शन दे रहा है, स्वीकार करो, थैंक्स दो, तो अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में सदा खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ये अव्यक्त इशारे, अभी अव्यक्त इशारे आज से नए शुरू हुए हैं। अव्यक्त इशारे की हेडिंग है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कल से लड़ाई शुरू हो गई है इजराइल और ईरान की, यहाँ डर तो नहीं लगा कि पता नहीं, कईयों ने कहा मेरे से पूछा, बहन जी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं है, तीसरे विश्व युद्ध की तो शुरुआत नहीं है, तो हमने कहा देखते चलो क्या होता है। तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो कि अंतर्गत जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। हाँ, बाबा की जिम्मेवारी है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आप तो कल से सुन ही रहे हैं कि लड़ाई छिड़ गई है।
पांडव में फोन मिला है किसी का?
मिला है, एक फोन मिला है, किसी का हो तो ले लें। कल से लड़ाई छिड़ गई है और काफी नुकसान भी हुआ है, ईरान का भी हुआ है, इजराइल का भी हुआ है और अमेरिका के कई जो वहाँ पर बेस थे जो मिडिल ईस्ट में आते हैं, कुवैत, बारेन, दुबई आदि जो भी है, यूएई, तो वहाँ को भी, उसको भी तबाह किया है ईरान ने, तो काफी लोग मरे भी हैं। और जो फ्लाइट्स है वो सब, जो मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स है, उन सबको रोक दिया है, एयरपोर्ट बंद हो गया है, तो काफी कुछ अभी ऊपर नीचे है। तो बहुत आत्माओं ने शरीर भी छोड़ा है और भी कुछ समाचार आया है शरीर छोड़ने का, तो आज हम सब उन आत्माओं को योगदान देंगे थोड़ी देर जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है। फिर हम डबल विदेशियों को प्रोग्राम देंगे और भी कई सूचनाएं डबल विदेशियों को देनी है, सब बैठे रहेंगे। तो हम सब जिन्होंने भी इस युद्ध में या और भी बाबा के बच्चों ने का भी समाचार मिला शरीर छोड़ने का, वो तो अपनी अलग तरीके से, लेकिन सबके प्रति हम योगदान देंगे आज। ठीक है, अभी बाबा की याद में बैठेंगे और शांति का दान उन आत्माओं को देंगे।